लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र बच्चों और विशेष रूप से पीड़ित बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देने हेतु आवश्यक उपाय करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं के संबंध में धर्माध्यक्षकों की धर्माध्यक्षीय धर्म सभा 2018 युवा विश्वास और बुलाहट के मंथन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमें उन विद्यार्थियों और उम्मीदवारों को एक विशेष और समग्र प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जो पुरोहिताई जीवन में प्रवेश करने की आशा रखते हैं। यह कलिसिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें उनके प्रशिक्षण में इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उन्हें संस्कृति और ईश शास्त्र का ठोस ज्ञान दें। जहां तक गुरुकुल के विद्यार्थियों का सवाल है, वे रासियो फंडामेंटलिस इंस्टीट्यूशनिस सचर 42 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अपने जीवन को संचालित करने का अभ्यास करें। धर्म सभा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई जिसका जिक्र करना हमारे लिए उचित है। सबसे पहले हमारे लिए यह बात आती है कि हम प्रशिक्षण दाताओं का चुनाव कैसे करते हैं। यह अपने में काफी नहीं है कि वे अपने में अति शिक्षित हों, उनमें भातृत्व के संबंध में प्रवेश करने की योग्यता होनी चाहिए जिससे वे दूसरों को समय देते हुए उन्हें सहानुभूति पूर्वक सुन सकें और अपने में गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करें। दूसरे स्थान में गुरुकुल के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे विभिन्न प्रशिक्षण समूह में गंभीरता और सक्षम कार्यों में सहभागी हों, जो नारियों की सहभागिता की भी मांग करती है। प्रशिक्षण का समूह जो अपने में छोटा होता लेकिन जिसमें अलग अलग विषयों की चर्चा की जाती है, अपने में बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। प्रशिक्षण का तीसरा विषय प्रशिक्षकों में इस बात को विकसित करने की मांग करता है कि वे अपने में भविष्य के प्रेरिताई कार्य हेतु उन गुणों को विकसित करें जो उन्हें अधिकार के साथ दूसरों के निर्देशन में सहायता करें। लेकिन वे अपने में इस बात का ध्यान रखें कि वे प्रशासकों की भांति व्यवहार न करें। हमें उम्मीदवारों को इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है कि वे अपने को समुदाय हेतु दे सकें। प्रशिक्षण के दौरान कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि याजकीय वाद के विचारों से ऊपर उठना, समूह में कार्य करने की क्षमता, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, जीवन में पारदर्शिता, दूसरों द्वारा सहचर्य हेतु खुला रहना इत्यादि। चौथे स्थान में गंभीर परिस्थितियों में आत्मचिंतन करने की पहल, क्योंकि बहुत बार युवा जो गुरुकुल में दाखिल होते अधिकारी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते हैं। यह सवाल अपने में विशेषकर तब नाजुक हो जाता है जब गुरुकुल के विद्यार्थी अपने में भटक जाते हैं, उनके संबंध प्रभावकारी रूप से स्थायी नहीं होते, कलिसियाई जीवन की कमी उनमें पाई जाती जो खतरे की निशानी बन जाती है। कलिसिया के नियमावलियों की चिंता नहीं करना उनमें उत्तरदायित्वहीनता को व्यक्त करता है जो समुदाय को गंभीर परिस्थिति में डाल देता है। पांचवी बात, प्रशिक्षकों के समुदाय का आकार। यदि यह बहुत बड़ा है तो इसमें भय यही होता है कि हम सबों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते और व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानना हमें उन्हें सही रूप में सहायता करने में बाधक बनता है। वहीं यदि समुदाय अधिक छोटा है तो वे अपने में घुटन और हर समय और हरदम निर्भरता का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि अंतर धर्म प्रांतीय स्तर पर गुरुकुल या प्रशिक्षण संचालित किया जाए, जिससे उम्मीदवारों को सही प्रशिक्षण दिया जा सके। पहली सलाह लोक धर्मियों, धर्म बंधुओं और पुरोहितों के संबंध में है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि युवा नर और नारियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके परिवार और समुदाय के जीवन में होने वाली बातों से संयुक्त रखा जाए। जीवन की हकीकतों पर आधारित प्रशिक्षण और मानवीय जीवन से संबंध उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समन्वय स्थापित करने हेतु मदद करेगा। दूसरा प्रस्ताव युवाओं के लिए जो अपने पुरोहिताई की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित की जाए, जिससे वे प्रेरिताई के अनुभव के साथ सुसमाचार के प्रचार में अपने को संलग्न कर सकें। तीसरी सलाह इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है कि हम रातियो फंडामेंटलिस इंस्टीट्यूशनिस सचरदोतालिस में वर्णित निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण अनुभव और समुदाय के संदर्भ में करें। यह उम्मीदवार को अपने जीवन में प्रेरिताई के उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने हेतु तैयार करता है। यह धर्म प्रांतीय सम्मेलन की सुविधा और संदर्भ के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। श्रोताओं, हमारी अलग अलग बुलाहटें हमें एक वैश्विक बुलाहट पवित्रता की ओर अग्रसर कराती है, जो हमारे हृदय को आनंद और खुशी से भर देता है। केवल इस पवित्रता की बुलाहट के आधार पर हम अपने जीवन को अलग अलग रूपों में देखते और अपने में इस बात से अवगत होते हैं कि ईश्वर हमें अपने जीवन को जैसे तैसे जीने हेतु नहीं, वरन हमें संत बनने हेतु बुलाते हैं। हमारी पवित्रता का यह स्रोत पिता में उत्पन्न होता, जो पवित्र आत्मा में हमारे लिए अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को भेजते हैं, जो ईश्वर के परम पावन पुरुष हैं। यीशु ख्रीस्त हमारे बीच में मानव बनकर आते और अपने मित्रता में हमारे साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, जिससे वे हमें शांति और खुशी प्रदान कर सकें। श्रोताओ, हमें अपने में पवित्र और संत बनने की जरूरत है, जिससे हम युवाओं को संत बनने हेतु आकर्षित कर सकें। युवा आज अपने में इस बात की मांग करते हैं कि कलीसिया अपने में सच्ची, दिव्यमान, पारदर्शी और आनंद का संदेश वाहक बने। केवल कलीसिया के संतगण ही अपने में इन मांगों को पूरा करने के योग्य हैं। आज बहुत से युवा अपने को कलीसिया से तटस्थ कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन मांगों को पूरा होते नहीं देखा, बल्कि ठीक इसके विपरीत उन्होंने कलीसिया की मानसिकता, विभाजन और भ्रष्टाचार का अनुभव किया है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि कलीसिया में कुछ समर्पित लोगों के दुर्व्यवहार ने इसकी छवि को और भी धूमिल किया है, और इसलिए यह जरूरी है कि कलीसिया अपने में एक निर्णय लेते हुए अपने प्रेरित कार्यों के निष्पादन में अपने मनोभावों में एक मूलभूत परिवर्तन लाए। युवा अपने में इस बात की मांग और सोच रखते हैं कि उन्हें संतों की जरूरत है, जो उन्हें और दूसरों को पवित्रता और संतों के मार्ग में ले चलें, क्योंकि पवित्रता कलीसिया का एक सबसे आकर्षक चेहरा है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि विश्व के नर और नारियों के लिए पवित्रता ही एक ऐसी भाषा है जिससे सभी उम्र, स्थान, संस्कृति के लोग देख और समझ सकते हैं, क्योंकि वे इसे अपने निकट और अपने लिए उज्जवल पाते हैं।
मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा, मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा। डूबती नैया का, डूबती नैया का तू है किनारा, मेरा ईश्वर तू है। जीवन सहारा। की चाह में
भटका मन है मेरा, पाप की राह में
आगे ना बढ़ सकूंगा मैं, आगे ना बढ़ सकूंगा मैं, आ जा बन के तारनहारा मेरा ईश्वर सहारा, मेरा ईश्वर तू है जीवन सहारा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। सासम्मान सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें एवं दिव्य उपासना के लिए बने परमधाम पीठ धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट सारा की एक किताब में संत पापा फ्रांसिस के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। वैटिकन न्यूज के संपादक अंद्रेया तोर्नेली ने कहा है कि पुरोहिताय पर लिखी किताब जिस पर सासम्मान सेवानिवृत्त संत पापा बेनेडिक्ट 16वें एवं दिव्य उपासना के लिए बनी परमधम पीठ धम्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल रॉबर्ट सारा का हस्ताक्षर है, उससे 15 जनवरी को फ्रांस में प्रकाशित किया जाएगा। ले फिगारो द्वारा प्रदान की गई पूर्व प्रकाशन सामग्री से पता चलता है कि उनके योगदान के साथ लेखक ब्रह्मचर्य पर बहस में प्रवेश कर रहे हैं और विवाहित पुरुषों को पुरोहित के रूप में नियुक्त करने की संभावना है। रत्जिंगर और सारा ने अपने आप को संत पापा फ्रांसिस के पुत्रानुरूप आज्ञाकारिता में दो धर्माध्यक्षों के रूप में प्रकट किया है, जो कलीसिया की एकता के लिए प्रेम की भावना से सच्चाई की खोज कर रहे हैं। वे ब्रह्मचर्य के अनुशासन का बचाव करना तथा इसमें बदलाव लाने के खिलाफ अपनी सलाह रखने का कारण बतलाना चाहते हैं। दो लेखों के साथ एक संत पापा बेनेडिक्ट 16वें और दूसरा कार्डिनल सारा, ब्रह्मचर्य का प्रश्न 175 पृष्ठों पर है। उन्होंने एक साथ एक परिचय और एक निष्कर्ष दोनों पर हस्ताक्षर किया है। अपने लेख में कार्डिनल सारा ने याद किया है कि पुरोहिताय एवं ब्रह्मचर्य के बीच सत्तामूलक संस्कारीय संबंध है। इस संबंध को किसी तरह से कमजोर करना द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा संत पापा पॉल 6वें, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और बेनेडिक्ट 16वें को सवाल के घेरे में डाल सकता है। उन्होंने लिखा है, मैं संत पापा फ्रांसिस से आग्रह करता हूं कि पुरोहित ब्रह्मचर्य के कानून को वोट देकर ढील देने की किसी संभावना से पक्के तौर पर हमारी रक्षा करें, चाहे यह कोई एक क्षेत्र तक ही सीमित क्यों ना हो। कार्डिनल सारा ने विवाहित पुरुषों के अभिषेक की संभावना को एक प्रेरितिक उथल पुथल, कलीसियाई भ्रम और पुरोहित की एक अस्पष्ट समझ कहा है। अपने संक्षेप योगदान में संत पापा बेनेडिक्ट ने उस विषय पर चिंतन किया है जो पीछे लौटते हुए ख्रिस्तों की यहूदी मूल तक गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि देने का प्रयास किया है कि ईश्वर का मानव के साथ नए व्यवस्थान के शुरू से ही, जिसकी स्थापना येसु के द्वारा की गई, पुरोहिताय एवं ब्रह्मचार्य एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने याद किया है कि पहली शताब्दी की प्राचीन कलीसिया में भी विवाहित पुरुष तभी पुरोहिताय का संस्कार ग्रहण कर सकते थे जब वे अपने आप को यौन क्रिया से दूर रखते थे। पुरोहित ब्रह्मचार्य कभी भी डोगमा नहीं रहा है। यह लातिनी कलीसिया का कलीसियाई अनुशासन है जो एक बहुमूल्य वरदान के रूप में प्रकट होता है, जैसा कि हाल के सभी परमाध्यक्षों ने स्वीकार किया है। पूर्वी रीति की कैथोलिक कलीसियाएं विवाहित पुरुषों के पुरोहिताभिषेक को छूट देती हैं। इस अपवाद को ला देने कलीसिया में बेनेडिक्ट 16वें ने भी प्रेरितिक संविधान एंग्लिकानोरुम कोएटिपुस में स्वीकार किया है, जो एंग्लिकन पुरोहितों को समर्पित किया गया है जो कैथोलिक कलीसिया के साथ एक होना चाहते हैं, जिसमें परमधम पीठ द्वारा अनुमोदित उद्देश्य के मापदंडों के अनुसार मामला दर मामला के आधार पर विवाहित पुरुषों को पुरोहिताभिषेक की अनुमति देता है। यह भी याद रखने योग्य है कि पोप फ्रांसिस भी इस विषय पर खुद कई बार अपना विचार व्यक्त किया है। जब वे एक कार्डिनल थे तब उन्होंने रबी अब्राहम स्कोरका के साथ एक वार्तालाप की किताब में व्यक्त किया था कि वे ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के पक्ष में हैं, जिसमें कई फायदे और नुकसान के साथ 10 शताब्दियों में त्रुटियों की तुलना में अधिक सकारात्मक अनुभव हुए हैं। परंपरा में एक वजन और वैधता होती है। विगत साल के जनवरी माह में पनामा से वापस लौटते वक्त विमान में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए याद किया था कि पूर्वी कैथोलिक कलीसिया में उपयाजक के सामने ब्रह्मचर्य अथवा विवाह का विकल्प रखा जाता है, किंतु लातिनी कलीसिया के संबंध में उन्होंने कहा था कि मैं संत पापा पौल षष्ठम के शब्दों की याद करता हूँ, जिन्होंने कहा था, ब्रह्मचर्य के कानून में परिवर्तन लाने की अपेक्षा मैं अपना जीवन अर्पित कर सकता हूँ। यह मेरे दिमाग में आया और मैं इसे कहना चाहा, क्योंकि यह एक साहसी वाक्यांश है जिसको उन्होंने इससे अधिक कठिन क्षण 1968 से 70 के बीच में कहा था। संत पापा ने यात्रा के दौरान कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि यह कलीसिया के लिए एक वरदान है, दूसरा कि वैकल्पिक ब्रह्मचर्य की अनुमति देने में मैं सहमत नहीं हूँ। अपने जवाब में उन्होंने कुछ दूरस्थ क्षेत्रों जैसे प्रशांत द्वीपों के लिए छूट देने की संभावना पर ईश शास्त्रियों के बीच बहस के बारे में भी कहा था, हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेरी ओर से कोई निर्णय नहीं है। मेरा निर्णय है कि उपयाजक अभिषेक से पहले वैकल्पिक ब्रह्मचर्य ना हो। यह मेरा व्यक्तिगत है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। यह स्पष्ट होना चाहिए। क्या मैं बंद हूँ? शायद, किंतु मैं ईश्वर के सामने इस निर्णय के साथ प्रस्तुत होना नहीं चाहता। और संत पापा फ्रांसिस ने 14 जनवरी को एक ट्वीट प्रकाशित कर येसु के अधिकार पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, येसु का अधिकार था क्योंकि वे जो शिक्षा देते थे, जो कार्य करते थे और कैसे जीते थे उसमें सुसंगति थी। अधिकार को इसी अर्थ में देखा जाता है, सुसंगति एवं साक्ष्य। उधर केरल के विल्ला कानूर स्थित क्रिस्त राजा कैथोलिक पल्ली ने परम प्रसाद के चमत्कार पर अध्ययन करने हेतु उससे रोम भेजा। सिरोमलाबार के तेल्लीचेरी महाधम प्रांत के क्रिस्त राजा गिरजाघर में 15 नवंबर 2013 को ख्रिस्त्याग के दौरान परम प्रसाद में येसु के चेहरे के समान आकृति प्रकट हुई थी। पल्ली के एक पूर्व सहायक बेबी जोसेफ पाई कट ने कहा कि परम प्रसाद को 10 जनवरी को कोची के उपनगर काकायार्ड में सिरोमलाबार गिरजाघर के मुख्यालय में ले जाया गया और अगले दिन उससे प्रेरितिक राजदूत महाधर्मदर्श जाम बपतिस्ता दे क्वाद्रो को सौंप दिया गया। परम प्रसाद की आराधना एक चमत्कार के रूप में विल्ला कानूर पल्ली में 21 सितंबर 2018 से ही की जा रही है। पाइकट ने 13 जनवरी को मार्टर्स इंडिया को बतलाया कि हमारे पल्ली पुरोहित फादर मैथ्यू वेंगाकुनल की अगुवाई में 4 सदस्य टीम ने परम प्रसाद को कोची दिया। कोची ले जाए जाने से पहले 10 जनवरी को पल्ली के द्वारा एक समारोह ख्रिस्ता का आयोजन किया गया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।